जली हुई कढ़ाई को देखकर अरुणिमा के होश उड़ गए। रसोई में भरे धुएं से उसे खांसी आ रही थी। उसने जल्दी से खिड़की खोली ताकि धुआं कम हो सके। एक गिलास पानी पीकर उसने खांसी कंट्रोल की, लेकिन उसकी नजरें जली हुई कढ़ाई पर ही टिकी रहीं। उसकी सारी सब्जियां जल गई थीं। वो हैरान और डरी हुई थी कि अब वो क्या खाना बनाएगी। तभी बाहर से आस्तिक की गाड़ी की आवाज आई। अरुणिमा के फिर होश उड़ गए। आस्तिक सीधे अपने कमरे में जाएगा, फिर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आएगा और खाना मांगेगा। लेकिन अरुणिमा उसे क्या देगी? ये जली हुई गोभी, जले हुए मटर, जले हुए टमाटर। उसके कानों में कदमों की आहट आई। आस्तिक घर के अंदर आ चुका था और सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर आहट अरुणिमा की धड़कनें बढ़ा रही थी। तभी रसोई के बाहर से ड्राइवर की आवाज आई। मैडम, बॉस थोड़ी देर में नीचे आने वाले हैं। डिनर तैयार है ना? अरुणिमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जल्दी से ग्रोसरी बैग में कुछ ढूंढना शुरू किया। अगर वो कुछ नहीं बना पाती तो आस्तिक उसे खरी खोटी सुनाएगा। सच में सास की जरूरत ही नहीं होती। कुछ औरतों के आदमी ही दो चार सास की भूमिका निभा लेते हैं। तो देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, अरुणिमा की स्थिति को देखते हुए एक प्रसिद्ध फिल्म का रोचक दृश्य याद आ रहा है, लेकिन मेरे शब्दों में। फिल्म है सूर्यवंशम और दृश्य है जब हीरोइन के पिता उसके घर आते हैं और घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। तब वो अपने पिता के लिए मीठी भात बनाती है। अरुणिमा जल्दी से ग्रोसरी बैग में से सामान निकाल रही थी, तभी उसने काउंटर पर चावल और दूध का पैकेट देखा। कुछ न समझ आने पर उसने वो दूध और चावल का पैकेट उठाया और जल्दी से कुछ पकाने लगी। 20 मिनट में आस्तिक अपने कमरे से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और किचन में अरुणिमा को आवाज़ दी। अरुणिमा, डिनर लगाओ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। किचन से अरुणिमा की आवाज़ आई। उसने जल्दी से एक बड़ी कटोरी में डिश रखकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। वो डर रही थी, उसके कदम नहीं उठ रहे थे, लेकिन आस्तिक अपने फ़ोन में व्यस्त था। अरुणिमा डाइनिंग टेबल पर आई और आस्तिक के सामने ट्रे रख दी। फिर वो थोड़ी दूर खड़ी हो गई क्योंकि उसे पता था कि आस्तिक ज़रूर गुस्सा करेगा। आस्तिक अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा था। उसने नहीं देखा कि अरुणिमा ने क्या रखा है। उसने चम्मच उठाया और डिश में डाला। उसने बिना देखे डिश उठाई और मुंह में डाली, लेकिन जब उसे मीठा स्वाद आया तो वो हैरान हो गया। वो जल्दी से डिश की ओर देखा। सामने दूध में चावल तैर रहे थे और स्वाद से पता चला कि उसमें चीनी डली है। उसने हैरानी से अरुणिमा की ओर देखा और गुस्से से कहा, खाना कहाँ है? जी वो मैं, आस्तिक की तेज़ आवाज़ से अरुणिमा डर गई और उसे कुछ बोला नहीं गया। वो घबरा कर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। आस्तिक उसे घूर रहा था। उसने दूध और चावल के बर्तन को देखते हुए कहा, ये क्या बकवास बनाया है तुमने? तुम्हें डिनर बनाने के लिए कहा था ना? मैंने ड्राइवर के हाथों ग्रोसरी का सामान भी भिजवाया था। इतना सामान मिलने के बाद तुमने ये दूध और चावल उबाल कर दे दिया है। जी ये मीठी भात है, अरुणिमा डरते हुए बोली। आस्तिक गुस्से में अपना हाथ मीठी भात के बर्तन पर मार दिया, जिससे वो सारा दूध और चावल डाइनिंग टेबल पर फैल गया। अरुणिमा का दिल जम गया था। वो डरते हुए आस्तिक की बातें सुन रही थी। आस्तिक ने गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें एक ढंग का काम नहीं आता है। पता नहीं किस गंवार से शादी करवाई है मेरे बाप ने मेरी। आस्तिक अरुणिमा पर नाराज़ ही था कि उसकी नज़र अरुणिमा के काटे हुए हाथ पर गई। उसने देखा कि उसकी उंगलियों में एक टिश्यू पेपर लिपटा हुआ था जो खून से लाल हो चुका था। घूरती हुई निगाहों से अरुणिमा को देखते हुए वो बोला, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? अरुणिमा कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो कांपती हुई आवाज़ में डरते हुए बोली, जी वो सब्जियां काटते हुए हाथ में चाकू लग गया था। आस्तिक ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुम सब्जियां काट रही थी और खाने में ये मीठी डिश है, तो सब्जियों को क्या काटकर डेकोरेशन में लगाने वाली थी? अगर सब्जियां काटी थी तो फिर खाना क्यों नहीं बनाया? ये मिठाई क्यों बनाई? जी वो दरअसल मैं फ्राइड राइस बनाने वाली थी, लेकिन सब्जियां जल गईं, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई, अरुणिमा ने गसते हुए सच बताया, क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था। आस्तिक उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लेता है और गुस्से में खड़े होते हुए बोलता है, किसी काम की नहीं हो तुम। एक काम दिया था तुमसे और तुमने वही खराब कर दिया। आज रात कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे कमरे में अपना ठिकाना कर लेना। ये कहकर आस्तिक अपना फ़ोन उठाता है और कमरे की ओर बढ़ जाता है। अरुणिमा उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। आस्तिक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ड्राइवर को फ़ोन करता है और अपने लिए बाहर से डिनर मंगवाने के लिए कहता है, लेकिन उसने अरुणिमा के लिए खाना ऑर्डर नहीं किया था। वैसे भी अरुणिमा का कुछ खाने का मन नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद अब उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसे बस सुकून से सोना था और उसके लिए इससे बड़ी राहत की बात और क्या हो सकती थी कि आस्तिक ने उसे ये कह दिया था कि उसे उसके कमरे में नहीं सोना है। इस वक्त अरुणिमा ऊपर भी नहीं जाना चाहती थी। उसने नीचे के हिस्से में ही 2-3 खाली कमरे देखे और एक साफ सुथरा कमरा देखकर उसमें सो गई। उसे बस सुकून से नींद चाहिए थी। बिस्तर पर पड़ते ही उसकी आंख लग गई। आज न जाने कितने दिनों बाद अरुणिमा सुकून से सो रही थी। उसे बिस्तर पर पड़ते ही इतनी सुकून भरी नींद आ गई थी कि उसने ये तक नहीं देखा कि वो कमरा काफी दिनों से बंद था और वहां सीलन की महक भी आ रही थी। उसे सिर्फ बिस्तर और तकिया नजर आया था जहां पर वो चादर तान कर सो गई थी। एक अच्छी नींद ले रही अरुणिमा को अचानक हलचल का एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे झंझोर रहा है और वो धीरे धीरे कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सपने में है, क्योंकि सपने में ही वो अपने शरीर पर भारीपन महसूस कर रही थी। पर जब उसे एहसास हुआ कि उसे ठंड लग रही है, तब जाकर उसका सपना टूटा और वो एकदम से आंखें खोलती है। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी नजरें आस्तिक की उन बुरी निगाहों से टकरा गईं जो इस समय उसके ऊपर थीं। आस्तिक इस समय अरुणिमा के कमरे में था और इस वक्त उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था, यहां तक कि अरुणिमा को उसकी पूरी बॉडी अपने ऊपर महसूस हो रही थी। अरुणिमा की सांसें भारी हो गईं। वो आस्तिक को अपने इतने करीब देख रही थी। आस्तिक धीरे से झुककर अरुणिमा के गालों के पास अपने होंठ रखता है और अपने दूसरे हाथ से उसके कपड़े उतारने लगता है। अरुणिमा बेडशीट को कसकर पकड़ लेती है और खुद को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आस्तिक ने उसे झकझोरते हुए उसकी आंखों में घूर कर देखा और फिर धीरे से उसके चेहरे के पास आते हुए कहा, तुमने मेरी आदत खराब कर दी है। ये तुम ही हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने कहा ना, तुमने मुझ पर कोई जादू किया है और अब तुम्हारा जादू असर कर रहा है। मुझे रात में तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारे बदन की खुशबू चाहिए थी, तुम्हारा वजूद चाहिए था, तुम्हारी सांसें चाहिए थी, मदहोशी में लिया गया मेरा नाम चाहिए था। बहुत कोशिश की सोने की, आराम करने की, खुद को रिलैक्स करने की, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारी तड़प हो रही थी, तुम्हारी चाहत हो रही थी। जब खुद की तड़प खुद पर हावी होने लगी, तब जाकर अपनी चाहत मिटाने के लिए तुम्हारे पास आ गया। आस्तिक की हर बात से अरुणिमा सहर रही थी। आस्तिक धीरे धीरे अरुणिमा की क्लीवेज पर कसाव कर रहा था और उसे और ज्यादा गहरे निशान और दर्द दे रहा था। अरुणिमा के सिर में फिर से दर्द की लहर गूंजने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए हर बार की तरह काउंटिंग शुरू कर दी।
अगली सुबह जब अरुणिमा सोकर उठी तो उसने देखा कि आस्तिक उसके कमरे में नहीं है। पूरी रात उसने अरुणिमा को सोने नहीं दिया था। सुबह न जाने किस घड़ी उसकी आंख लगी थी, पर अब जब वो जाग चुकी थी तो उसने देखा कि कमरे में खिड़की से बाहर की तेज धूप आ रही है। इसका मतलब अभी अभी सुबह नहीं हुई थी, बल्कि दोपहर का समय था। अरुणिमा अंगड़ाई लेती है और अपने कपड़े पहनती है, क्योंकि इस वक्त वो बिना कपड़ों के थी। आस्तिक ने रात उसके सारे कपड़े उतार दिए थे। कपड़े पहनकर वो बाहर हॉल में आती है, क्योंकि उसे खुद के लिए कॉफी बनानी थी। पर जब वो हॉल में आती है तो उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। डाइनिंग टेबल के पास एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र कोई 19-20 साल की होगी और वो इस वक्त टेबल की सफाई कर रही थी। अरुणिमा थोड़ा चौंक गई, क्योंकि हॉल वैसा नहीं लग रहा था जैसा कल था। अब वहां सफाई हो रखी थी और धूल मिट्टी का नामोनिशान नहीं था। डाइनिंग टेबल भी अच्छी तरह चमक रहा था। अरुणिमा हैरानी से उस लड़की को देखते हुए उसके पास आती है। उस लड़की ने जैसे ही अरुणिमा को देखा, उसने टेबल पर कपड़ा रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते मैडम, तुम कौन हो? अरुणिमा हैरानी से उसे देखती है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, किस मी? अरुणिमा एकदम से चौंक जाती है। उसका एक कदम अपने आप पीछे हो जाता है और वो उस लड़की को हैरानी से देखने लगती है। वो लड़की सिर्फ 20 साल की थी और उसके चेहरे पर मासूमियत और चंचलता थी। सिंपल सूट सलवार में वो लड़की अरुणिमा के सामने खड़ी होकर किस मी कह रही थी। अरुणिमा हैरानी से बोली, क्या बकवास कर रही हो? तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैडम, मेरा नाम किस्मी है और मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। मुझे आज ही काम पर रखा गया है। अरुणिमा हैरान होकर बोली, तुम्हें किसने रखा है काम पर? तुम उठ गई? सीढ़ियों से आस्तिक की आवाज आई। उसे सुनकर वो लड़की, जिसने अपना नाम किस्मी बताया था, जल्दी से चेहरा नीचे झुका लेती है। अरुणिमा हैरानी से पीछे देखती है। आस्तिक इस वक्त बिजनेस सूट में था। वो सीढ़ियों से उतरते हुए अरुणिमा के पास आता है और कहता है, ये लड़की न्यू मेड है, इस घर में साफ सफाई का काम करेगी और हाँ, ढंग का खाना भी बना लेगी। कल तुम्हारे हाथ के खाने का एक्सपीरियंस देखकर मुझे लगा कि एक मेड रख लेनी चाहिए। इसका नाम थोड़ा अजीब है, इसलिए किसी के सामने सोच समझकर इसका नाम लेना। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती है। आस्तिक अपना फोन निकालते हुए कहता है, शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसे बता देना कि मेहमानों के लिए क्या बनाना है। और हाँ, मेहमान बहुत खास है, तो गलती से भी तुम किचन में मत जाना कुछ बनाने के लिए, वरना पिछली बार सिर्फ सब्जियां जलाई थी, इस बार पता चले पूरा किचन जला बैठी हो। अरुणिमा शर्मिंदगी से चेहरा नीचे कर लेती है। आस्तिक वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद किस्मी अरुणिमा के पास आकर बोली, मैडम, खाने में क्या बनाना है? अरुणिमा कुछ सोच रही थी, फिर उसने किस्मी को देखते हुए कहा, वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नाम किस्मी क्यों है? किस्मी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे वो क्या है ना मैडम, मेरे माता पिता अंग्रेजी में थोड़ा हट के नाम रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम किस्मी रख दिया। किस्मी अपने नाम को इतनी खुशी से बता रही थी कि अरुणिमा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें पता है किस्मी का मतलब क्या होता है? किस्मी एकदम से अरुणिमा को देखने लगी। अरुणिमा ने समझाते हुए कहा, किस करने का मतलब होता है चूमना, और किस्मी का मतलब होता है मुझे चूमो। तुम्हारे नाम का सीधा सीधा मतलब है कि तुम लोगों से कह रही हो कि कोई तुम्हें आकर किस करे।